डॉक्टर साहब, हमारी आपसे जो गुफ्तगू होती है अक्सर, और पिछले बार भी हमारी रमज़ान को ही लेकर आपसे गुफ्तगू रही है, इस बार हमारा जो मौजू है रमज़ान और ग़िज़ाइत है। इसमें सबसे पहले और अहम सवाल यही है कि हमें इस मुबारक महीने में किन ग़िज़ाओं का यानी इंतखाब करना चाहिए और कैसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के का सवाब जो है वो शहीद हुजजी के नाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने और उम्मीद करता हूँ कि इस महीने में जो लोग बहुत जो रोज़ा रखे हैं, ना ही उनको बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत सताए और ना ही भूख की शिद्दत। ये जो महीना है, खुदा का महीना है, और मैं उम्मीद
इंशाल्लाह
रखता हूँ कि रोज़ेदार सही व सालिम रहें, बीमारियों से महफूज रहें, और जो रोज़ा रखने का हक है, इस्लामी तरीके से, इस्लामी रविश से, उस तरह से रोज़ा रखें और उनके जिस्मों को और बदन को कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरी नज़र में जो मैं कह सकता हूँ रिवायती तरीके से बेहतरीन सहरी है, यानी फास्ट फूड वगैरह के मुकाबले में, कि वो जौ का और अंगूर का शीरा है। इससे बदन को ताकत मिलती है, और जो लोग जहनी काम करते हैं या जिस्मानी मेहनत ज़्यादा करते हैं या वो इस माजून से कि जो अंगूर के शीरे से और तिलों के शीरे से बनती है, बहुत मुकव्वी होती है। इससे ताकत के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से या सहनी लिहाज से बेहतरीन एनर्जी जो है वो बदन को हासिल होती है। अंगूर का और तिलों का जो शीरा होता है, जूस होता है, वो जो प्यास की तशनगी होती है उसकी शिद्दत को कम करता है। इसलिए कि ये दोनों मिलकर काफ़ी मुकव्वी होते हैं। आप जो है एक प्याले में ताज़ा इसका जूस बना सकते हैं। इससे काफ़ी बदन को जो है वो तकवियत मिलेगी, और जैसे कि मैंने पिछले गुज़श्ता प्रोग्रामों में जिक्र किया था कि इसमें जो ताकत होती है वो शहद की ताकत होती है। यानी आप जब सहरी खा रहे हों तो आप ये ख्याल रखें कि चावल से और रोटी से अपने शिकम को पुर ना कर लें, क्योंकि इस तरह से आपका मैदा भी संगीन हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और बल्कि आप ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें कि जो एनर्जी, जिनके अंदर फुल एनर्जी हो, तकवियत हो। रिवायती लिहाज से माहे रमज़ान में, कि जैसे कि इमाम सादिक से इसकी निस्बत दी गई है इस हिकमत की, क्योंकि अगर हम रियायत करें इस महीने में ग़िज़ाओं की, खाने पीने की, और क्योंकि हम खाना नहीं खाते हैं तो इससे क्या है, खून भी साफ़ होता है, क्योंकि हम साल भर जो ग़िज़ाएं लेते हैं उससे खून गाढ़ा हो जाता है या गलीज़ हो जाता है। और लेकिन रमज़ान में जब हम खाना छोड़ते हैं तो इस तरह से, और सही अगर हम डाइट्स लेते हैं, सही
बहुत बहुत
ग़िज़ाओं का
शुक्रिया,
इंतखाब
बहुत
करते हैं।
अच्छी अच्छे नुकात की तरफ आपने इशारा किया। अब अभी आपने जैसा बताया कि सहरी के में ये जो चीज़ें आपने बताई खाने के लिए, इसके अलावा इंसान प्यास बुझाने के लिए जो है वो क्या, बाज़ लोग कहते हैं कि खुरमा और दही का इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या इस तरह का कुछ है इस्तेमाल के लिए?
यहाँ से सहरी में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसकी सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि इससे शिद्दत और बढ़ती है प्यास की। आप हल्का अगर ले रहे हैं तो खट्टा, खटास भी बहुत हल्की ले।
जी
मैं सहरी की बात करूं कि सहरी में آپ کن غذاؤں کا انتخاب کریں؟ جب آپ سحری کھا چکے ہوں تو آپ جو ہیں ایک لہسن کی کا پیس لے کر اس میں کچھ سوراخ کریں اور اس کو منہ میں رکھ لیں, تو اگر آپ اس کو چبائیں گے تو منہ میں بدبو آنے لگے گی. بلکہ آپ اس میں سوراخ کریں اور منہ میں اس کو رکھ لیں تو آپ اس کے چوسنے سے جو لہسن کے اندر جو غذائیت ہوگی وہ آپ کے شکم میں جائے گی, آپ کا معدہ مضبوط ہوگا, اور آپ کا جب معدہ مضبوط ہوگا تو آپ کا جو جگر ہے وہ بھی مضبوط ہوگا, اور ماہ مبارک رمضان میں مریض نہیں ہوں گے, کیونکہ اس طرح کی جو بیماریاں اس مہینے میں ہوتی ہیں یا تو معدے کا زخم ہوتا ہے یا بیکٹیریا جو اس میں معدے میں پیدا ہو جاتے ہیں, اور تو اس لیے آپ ایک پیس جو ہے وہ لہسن کا ضرور لیں, اور کھانے کے بعد سحری لینے کے بعد آپ ایک گھنٹے تک نہ سوئیں کم از کم, تاکہ یہ غذا جو ہے آپ نے جو سحری کے عنوان سے لی ہے وہ اچھی طرح سے ہضم ہو جائے, اور ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں, آپ ایک نیند لے سکتے ہیں, اگر وقت نہیں ہے تو ہم اس کے بعد افطار کی گفتگو کریں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ابھی ہم نے پہلے سحری کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر افطار کے لیے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے, استفادہ کریں گے یقیناً ہمارے ناظرین بھی, کیونکہ بہرحال وہاں پہ ہندوستان اور پاکستان میں جہاں پر ہمارے زیادہ تر ناظرین موجود ہیں وہاں پر تھوڑا انداز الگ ہوتا ہے سحر اور افطار کے موقع پر جو غذائیں استعمال ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ ذہن میں رکھیں, بالخصوص وہاں پر جہاں پہ اس سال بہت سخت گرمیاں پڑ رہی ہیں, تو وہ لوگ یقیناً استفادہ کریں گے. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ العارف باللہ آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کوشش کریں کہ کیونکہ خدا کے لیے ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو اس وقت خدا بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کی مانتا ہے, دراصل ہم لوگوں کا ناز اٹھاتا ہے. تو اگر افطار سے پہلے, ان کا کہنا ہے آیت اللہ کشمیری کا کہ افطار سے پہلے پہلا لقمہ جب آپ منہ میں لے رہے ہوں جو دعا آپ کریں گے, اور اس کو آپ ضرور جو ہے خدا سے کہیں کہ میں نے تیری خاطر یہ روزہ رکھا ہے, تو وہ بھی ضرور مانے گا اس دعا کو.
ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایران سے ہے, اور ایران میں جو ہے جو افطار کیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہاں پر پنیر ہوتا ہے, سبزی جسے کہا جاتا ہے کہ اس کو سبزی کہا جاتا ہے, خام سبزی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور روٹی اس کے ساتھ کالی چائے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کو ہم لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح اگر کسی کو دیں گے تو شاید ہم لوگ کو مارنے کے لیے دوڑا لیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ سحر تو ہم نے کر لیا, اب افطار میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سحری کے بارے میں بتایا کہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, جیسے آخر میں آپ نے کہا کہ ایک لہسن ہم لوگوں کو جو ہے وہ آخر میں پینا نہیں, پانی سے نکل لینا چاہیے. یہ تو سحری ہو گئی, اس کے بعد ایک گھنٹے نہیں سوئیں گے اور پھر سو جائیں گے اور سوتے رہے اور افطار کے ٹائم اٹھ گئے, اب افطار ہم کیسے شروع کریں اپنا؟
آپ نے ماشاءاللہ سے کافی بیان کر دیا کہ وہاں کے ایران میں کیسے شروع کرتے ہیں اور وہاں کیسے. ہم اس موسم میں, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, ہم رمضان میں کیونکہ پورا سال کھاتے پیتے ہیں اور پیتے ہیں بہت ساری چیزیں, کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں, اس مہینے میں اس موسم میں ہم اپنے بدن کو آرام دیتے ہیں. سال میں ایک بار 30 دن کے لیے ہم اپنے بدن کو, اپنے معدے کو آرام دیتے ہیں, کیونکہ سال بھر ہم مختلف طرح کی غذائیں, مختلف طرح کے کھانے, وہ فرائیڈ ہوں یا غیر فرائیڈ ہوں, ہم کھاتے رہتے ہیں, کیونکہ جب بہت سارے کام کرتے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہیں, خون بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ معدے کو اور بدن کو آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے. क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, आप देखिए कैंसर है, पार्किंसंस है, या नफ्सियाती बीमारियां हैं कि जो पहले ज़माने में इतनी राइज नहीं थी। अगर हम फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कम मकदार में ले सकते हैं, लेकिन ऑयल जो हम इस्तेफादा कर रहे हैं वो अच्छा ऑयल होना चाहिए, जैतून का ऑयल हो या जो भी ऑयल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर हम जब फ्राई कर रहे हैं तो लाइट करें, बहुत डीप फ्राई ना करें ताकि मैदे को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर आपके मैदे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो इफ्तार में बेहतरीन ग़ज़ा जो है वो खुरमा, खजूर और गर्म पानी है, क्योंकि खुरमा जो है बहुत ही बेहतरीन ग़ज़ा है मैदे के लिए, क्योंकि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो भारीपन हुआ है उसको उनको राहत मिलेगी। अगर आपने गर्म पानी के साथ खुरमा लिया है तो मैदा साफ हो जाएगा और बहुत उसको आराम मिलेगा। उसके बाद आप सूप ले सकते हैं, यानी आप इफ्तार जो है वो बहुत ही हल्की ग़ज़ाओं के साथ शुरू करें ताकि के जो मैदे में वो ग़ज़ाएँ पहुँच रही हैं और फिर उनका खून बन रहा है वो सही हो, सालिम रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो यानी आप फ्राइड ग़ज़ाएँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, लेकिन हमारी सिफारिश ये है कि आप इफ्तार की शुरुआत गर्म पानी से, खुरमे से और सूप वग़ैरह और हल्की ग़ज़ाओं से करें। बहुत हल्की ग़ज़ाएँ, लाइट आप जो है वो ग़ज़ाएँ लें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप उसके बाद गैप करें और 11 बजे खाना खाएं, क्योंकि इससे जो है मैदे पर काफ़ी दबाव बनेगा और इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप ज़्यादा संगीन ग़ज़ाएँ लेकर लेट नाइट फिर सो जाएं, बल्कि ये इबादत का महीना होता है, हम दुआओं का महीना होता है, खुदा का महीना है, इसलिए हम खाने पीने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय मानवियत पे तवज्जो दें। ये कि क्योंकि हमारा बदन जो है वो मुकवी ताकतवर रहे, उसके लिए हम बादाम का जो है वो शीर बना सकते हैं कि जो बादाम है उसको हम रेज़ा रेज़ा करें, वो बॉयल वाटर में डालें उसको, या मिक्सर में उसको ग्राइंड करें, जब वो पिस जाए तो उसको दूध में हम डाल सकते हैं, उसको हम शीरे बादाम कह सकते हैं, यानी बादाम की फिरनी इससे इस तरह से बना सकते हैं। 3 खुरमे अगर उसमें डाल दें, इजाफा करें, कुछ देर के बाद उसको पकाते रहें, 10-20 मिनट के बाद जब वो तैयार हो जाए तो हम उसको ले सकते हैं। इससे काफ़ी एनर्जी बदन को मिलती है, बहुत ही मुकवी यह ग़ज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ें जो है वो मैदे में डाल लें, शिकम में डाल लें जो नुकसान।
डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, और आदमी को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसा इस्तेमाल भी करना चाहिए, बादाम का इस्तेमाल है और खुरमे का इस्तेमाल है। बहरहाल आज के ज़माने में मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, हर इंसान जो है वो उसके पास इतना पैसा हो कि वो बादाम को इतनी तादाद में जो है बादाम का इस्तेमाल कर सके। बहरहाल जो अफराद बादाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो खुरमे का इस्तेमाल कर लें, और जो खुरमे का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनके लिए डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि वो गर्म पानी से अपने रोज़े को का इफ्तार को इफ्तार कर सकते हैं। अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में ही आपने कहा कि यह गर्मी का मौसम है, और इस बहरहाल पूरी दुनिया जानती है कि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एहतियाज होती है जिस्म को तो वो है पानी की प्यास। आनी इंसान सबसे ज़्यादा जो है वो प्यास उसको लगती है इस मौसम में, तो इस और रमज़ान इसमें आदमी को भूखा भी रहना है प्यासा भी रहना है, तो इस प्यास से बचने के लिए इंसान क्या करे?
देखिए रमज़ान के महीने में के जो हमारे पास फिगर्स हैं वो ज़्यादातर प्यास का असर होता है भूख से ज़्यादा। अब ये कि अगर तशनगी ज़्यादा शदीद है और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खाक शीर जो होते हैं गाम गर्म पानी में एक गिलास में 2 चमचे खाक शीर के डालें और वो आप पिए तो बदन को जो पानी की ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत पूरी होती है। या कि जो सिरका होता है अंगूर का या सेब का सिरका होता है आप इससे या जब भी आप बाथरूम में जाने वाले हों उससे पहले अपने बदन को इस सिरके से धोएं पूरी तरह से, तो इससे जो आपकी स्किन की जो सुराख हैं ऑक्सीजन के लिए वो खुल जाते हैं और बदन को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो स्किन की ज़रूरत से वो हासिल हो जाती है और बदन जो है गर्म कम होता है, ठंडा रहता है। दूसरी जो रविश है उसको माउजुब कहते हैं, यानी पनीर का पानी। आप जब दूध को बॉईल कर लें, जब वो बॉईल हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सिरका या लीमू डाल लें, तो जब वो फट जाए तो एक उसको पैकेट में रख के कपड़े के पोटली में बांधकर उसको लटका दें, तो जो पानी निकल कर आएगा वो आप इस पानी से हर रोज़ एक गिलास पानी पी लें, एक प्याली पानी पी लें और जो पनीर बचा है वो आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी रविश है, इससे जो बदन का जहरीलापन है वो भी दूर हो जाएगा और प्यास में भी काफ़ी कंट्रोल रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 80% तक प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा। ये जो मैंने तरकीब बताई है आपको, ये हिकमत में इसको जिद्द सरतान कहते हैं, जिद्द सरतान यानी एंटी कैंसर। जो मैदा होता है और जिगर होता है वो काफ़ी सेहतमंद रहता है कि जो ब्लड का फैट है और चिकनाई है वो दूर होती है। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि अगर नाजरीन या कोई भी शख्स अगर 1 महीने तक इस पर अमल करेगा कि जो आर्थराइटिस की बीमारी है या जोड़ों का दर्द है वो सही हो जाएगा। और एक दूसरी तरकीब भी है, वो ये है कि आप एक अदद सेब लें जिसकी स्किन उतार चुके हों और उसको रेज़ा रेज़ा कर लें, उसको फिर उसमें गुलाब का पानी डालें, इस्तकुदस का उसमें थोड़ा सा अरक शामिल कर ले, ये इसका सेब का फालूदा बन जाएगा। इससे तशनगी भी दूर होगी, प्यास भी दूर होगी और बदन को कुव्वत भी मिलेगी, दिल को भी कुव्वत मिलेगी, दर्द को भी तक दरमान मिलेगा और जो आज़ाए रईसा हैं बदन के जैसे कब्द है, मैदा है, मग्ज़ है, जिगर है, इसको तकवीत मिलेगी। जो तरकीबें मैंने बताई हैं, जो रविशें बताई हैं, और मेरी दूसरी सिफारिश ये है कि पेट भर कर शिकम पुर ना करें कभी भी। आप जब दस्तरखान पर बैठे हैं तो आप इससे पहले कि पूरी तरह से आपका शिकम भर जाए, पुर शिकम हो जाए, आप हाथ खींच लें, जैसे कि पैगंबर ने फरमाया था हज़रत अली से कि अली अगर चाहते हो कि कभी भी तबीब के पास ना जाओ तो कभी भी पुर शिकम जो है खाना मत खाओ, क्योंकि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि बीमारियों का जो घर है वो मैदा है। आप जब सही ग़ज़ाएँ लेंगे, सही डाइट लेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप सही ग़ज़ाएँ नहीं लेंगे तो
आपका डॉक्टर साहब जो आपने नुकात बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और वाकई जो डॉक्टर साहब ने ख़ासकर जो दूध आप फाड़ कर और उसके बाद उससे जो एक पोटली बनाएं और उसके अंदर से जो यानी पानी टपक रहा हो, दूधी होगा, उसको पिए, उससे प्यास भी बुझती है और डॉक्टर साहब के मुताबिक उससे कैंसर जैसी बीमारी जो खुदा न खास्ता किसी को हो उसका भी इलाज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं।